आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। आज की बड़ी खबर में पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आज जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले में उन्हें चोट भी आई है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने घटना पर अपना बयान देते हुए कहा कि श्री ट्रंप पर यह हमला ऑस्ट्रेलिया और अमरीका के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर किया गया अक्षम्य वार है। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र की पहचान ही सम्मान पूर्वक की जा रही राजनैतिक बहस है जिसमें हिंसा की कोई जगह नहीं होती। अमरीका की जांच एजेंसियों का कहना है कि वे इस हमले की जांच को बहुत व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं। श्री ट्रंप के कैंपेन से ये बयान आया है कि पेंसिल्वेनिया रैली के दौरान हुए इस हमले में श्री ट्रंप ठीक हैं। श्री ट्रंप के सोशल मीडिया पर आए वक्तव्य में उन्होंने कहा कि उनके दाएं कान के ऊपर के भाग में गोली से चोट लगी है और उन्हें तुरंत सीक्रेट सर्विस द्वारा अस्पताल ले जाया गया था। अमेरिका का फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस हमले की जांच कर रहा है, जबकि इस हमले में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और एक की मृत्यु हो गई है। मरने वाले सभी पुरुष हैं। मरने वाले 20 वर्षीय पुरुष को संदिग्ध थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के रूप में पहचाना गया है। इसी बीच अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने श्री ट्रंप से बात की है। श्री बाइडेन रिहोबोथ बीच डेलावेयर में अपनी सप्ताहांत की यात्रा को बीच में ही रोक व्हाइट हाउस लौट रहे हैं, जहां उन्हें होमलैंड सिक्योरिटी और दूसरी कानूनी एजेंसियां नवीनतम जानकारी प्रदान करेंगी। वहीं अगले माह के कैश रेट को घोषित करने से पहले रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया नवीनतम रोजगार आंकड़ों की पड़ताल करेगा। अमेरिका में अपेक्षा से अधिक आई महंगाई दर की कमी के बाद अब कयास लगाया जा रहा है कि वहां का फेडरल रिजर्व बैंक ब्याज दर में कटौती करेगा, जिसके बाद शुक्रवार को ऑस्ट्रेलियाई शेयर मार्केट अपने उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। ऑस्ट्रेलिया में लगातार रोजगार के आंकड़े बढ़ते ब्याज दर और कम होती नौकरियों के बीच भी पुष्ट ही आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से जून माह के लिए आंकड़े आगामी गुरुवार को आएंगे। मई माह में बेरोजगारी दर 4.1% से घटकर 4% हुई थी। अर्थव्यवस्था में 39,700 नई नौकरियां भी जुड़ी थीं। वहीं लिथियम बैटरी के चलते लगने वाली आग से होने वाले जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए नए उत्पाद मानक बनाए जा रहे हैं। 2022 से 2023 के बीच न्यू साउथ वेल्स में ई बाइक और ई स्कूटरों में लिथियम बैटरी से लगने वाली आग के 90 हादसे हुए, जिसके बाद मानकों को तय करने की मांग बढ़ी। वे उत्पाद जो मानकों पर खरे नहीं उतरे उनके लिए कॉरपोरेट को $825,000 जबकि व्यक्तियों को $82,500 का जुर्माना भरना होगा। फेयर ट्रेडिंग मंत्री एनालॉग चांटी वॉन्ग का कहना है कि इन बैटरियों के चलते होने वाले हादसे चिंताजनक हैं और इनका निवारण तुरंत होना चाहिए। इसीलिए उनका यह भी कहना था कि नए मानक बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। वहीं तस्मानियाई सरकार के मुख्य अबोरिजिनल स्वास्थ्य सलाहकार की भर्ती जल्द ही शुरू होने वाली है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री गाय बानेट का कहना है कि ये नया पद तस्मानियाई अबोरिजिनल लोगों और संस्थाओं से सलाह के बाद बनाया गया है। ये सलाहकार तस्मानिया में अबोरिजिनल लोगों के स्वास्थ्य परिणामों को सुधारने के लिए सांस्कृतिक परामर्श और नेतृत्व प्रदान करेंगे। श्री बानेट का कहना है कि ये सलाहकार खासकर यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य के अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं सांस्कृतिक रूप से सम्मानजनक व्यवहार कर रही हैं और उन अबोरिजिनल लोगों के लिए सुरक्षित है जो वहाँ काम करते हैं और जो वहाँ इलाज के लिए जाते हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। गाजा में एक मानवीय करुणा के लिए चिन्हित इलाके पर हुए इजरायली हमले में कम से कम 90 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसराइल का कहना है कि उन्होंने हमास के बड़े नेता मोहम्मद देफ और उनके डिप्टी राफा सलामा पर हमला किया था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के आदेश दिए थे, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी है कि इन दोनों में से एक भी आदमी मारे गए हैं या नहीं। श्री नेतन्याहू का कहना है कि मोहम्मद देफ ने 7 अक्टूबर को हुए हमले की साजिश रची थी। वहीं गाजा के खान यूनिस में नासर अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। और अंत में खबरें भारत से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। श्री मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे भारत डिजिटल भुगतान में अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 से 4 वर्षों में 8 करोड़ नई नौकरियां उपलब्ध हुई हैं, जिससे बेरोजगारी के बारे में फर्जी बातें फैलाने वालों को चुप करा दिया गया है। ऐसा कहते हुए उन्होंने विपक्ष की तरफ निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि हालांकि दुनिया देश के लोगों की क्षमताओं को देख रही है, आज भारत डिजिटल लेनदेन में नए कीर्तिमान बना रहा है और भारत के UPI और आधुनिक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की वजह से लोगों की जिंदगी आसान हुई है और उनके लिए एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजना भी आसान हुआ है। वे मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय INS टावर का उद्घाटन करने के बाद ये संबोधन दे रहे थे। इसी के साथ 14 जुलाई 2024 के संक्षिप्त समाचार यही समाप्त होते हैं। दीजिए वृशाली को इजाजत। नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।